आचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार की हमारी तीसरी गाथा चल रही है। अभी यहां पर पृष्ठ क्रमांक 44 पर हम, ये तो हो गया, आगे गए ना हम 9 तारीख, हाँ 46 पेज पर आए हैं हम। हाँ देखो, यहाँ बीच में जो पैराग्राफ चलता है, बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं यहाँ पर, आई बीजी गाथा में, मैंने अभी तीसरी गाथा कहा, यहां तो दूसरी गाथा चल रही। दूसरी गाथा में जीवो चरित दंसन नान ठिदो, त्याथी उपाड़ियों छे, त्याथी उपाड़ी छे ने वहां से शुरुआत की है। अने छेले जहां 47 शक्तियों वर्णन छे, त्या जीवत्व शक्ति थी शुरुआत करी छे। आत्मा में एक जीवत्व शक्ति छे, जेने लईने आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद ने सत्ता एवा भाव प्राण ने धारण करे छे, एनाथी टके छे। जीव कहता जीवतु द्रव्य, जीवत्व स्वभाव थी जीवे छे। आई एम कहे छे के हे भव्य, जे जीव दर्शन ज्ञान चारित्र मा स्थित थई रियो छे, एटले जे जीव ज्ञान मा जणाय छे, श्रद्धामा निर्णित थाय छे, अने स्थिरतामा आवे छे, तेने निश्चय थी स्व समय जान। देखो यहां पर ये पैराग्राफ यहां तक तो हम पढ़ चुके थे, और हमने इस जीव को जीव क्यों कहा जाता है इसके बारे में चर्चा भी की थी। अब यहां क्या बात बता रहे, यहां जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो है उसकी बात यहां नहीं कर रहे, यहां तो ऐसा समझा रहे हैं कि जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसका जिन्होंने निर्णय किया है, श्रद्धा में भी जिन्होंने निर्णित किया है कहो, और आचरण में भी उसी में वह स्थित हुए हैं, ऐसा जो कोई परिणमन हुआ है उस परिणत आत्मा को स्वसमय कहा। यानी यहां त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बात नहीं है, या पर्याय रूप जो आत्मा है कैसा कि निर्मल परिणति जिसने शुरू की है, ऐसे जीव की बात की है, उसको स्व समय कहा है। क्या कहते देखो, निश्चेति स्व समय जान, यहां तक आए। कुंद कुंद आचार्य पोकारी ने कहे छे के हे भाई, जे आत्मा पोतानी श्रद्धा मा श्रद्धायो ज्ञान मा जनायो अने चारित्र मा ठर्यो, एने तू स्व समय जान। तो यह जो कुछ तीन बातें बताई वो तो परिणति है ना, पर्याय में यही बात हो रही है, और पर्याय में ये जो बात हो रही है, उस रूप जो जीव परिणत हुआ है उसको स्व समय कहा है। જીવને ધ્યેય એટલે દ્રષ્ટિમાં લેવા યોગ્ય તો દ્રવ્ય છે એ વાત અહીં નથી। અહીં તો જે આત્મા પોતાના સ્વરૂપે પરણમે છે એને સ્વસમય કહ્યો છે। જે આત્મા પોતાની શુદ્ધ પરિણતિમાં આવે છે તેને સ્વસમય કહ્યો છે। આત્મા જે વિકાર રૂપે હતો તે જ્યારે શુદ્ધ પરિણતિએ પરિણમે ત્યારે તે સ્વસમય છે। ત્યારે આત્મા આત્મા રૂપે થયો એમ કહેવાય છે। યાને ત્યારે આત્મા આત્મા રૂપે થયો યાને એ દો આત્મા કી બાત ઉઠાઈ હૈ તો કૈસા હમ ઉસકા કનેક્શન લગાએંગે। પહેલા આત્મા કિસકે બારે મેં કહા ઓર દૂસરા આત્મા કિસકે બારે મેં કહા હૈ કૌન બતાએગા આપ બતાએંગે। હા બોલો। હા હા તો કોનસી કો કૈસા લેના વાસંતીબેન આપ બતાએગી। આત્મા આત્મા રૂપે થયો પહેલા આત્મા ઓર દૂસરા આત્મા એસા કરો તો જરા આસાની સે સમજ મેં આયેગા। हाँ तो इसमें दो आत्मा बताए ना तो कौन सा आत्मा कैसा लेना। हाँ पहला त्रिकाली ध्रुव और दूसरा हाँ देखो आत्मा थयो कई रूपे थियो तो आत्मा रूपे थियो यानी पहला जो आत्मा है वो पर्याय रूप आत्मा है। जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव रूप आत्मा का आश्रय लेगा तो पर्याय में उस रूप होगा। तो पहला आत्मा जो है वो पर्यायात्मक है और दूसरा आत्मा जो है वह त्रिकाणी ध्रुव है। आपने बिल्कुल उल्टा बताया और आपको ही फॉलो किया उन्होंने कोई बात नहीं। लेकिन क्या है हम जरा उस पर सोचेंगे ना तो ये बात हमें आदत लगेगी कि हम घर पे भी बैठ के पढ़ेंगे तो हमको इस तरह से उसका मतलब विचार करने को आना चाहिए। सिर्फ पढ़ गए उसकी बात नहीं है। हाँ क्या कह रहे देखो त्यारे आत्मा आत्मा रूपे थयो एम कहवाय। अलबत्त આવા આત્માને ધ્યેય તો ત્રિકાળી દ્રવ્ય જ છે। અને આવા આત્માને યાને કેવા કે જે એવી રીતે પરિણત થયો છે એવા આત્માને કેવી રીતે પરિણત થયો સ્વસમય રૂપે એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપે જે પરિણમ્યો છે એવા આત્માને ધ્યેય તો ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે। નિયમસારમાં આવે છે ધ્યેય અને દ્રષ્ટિમાં લેવા યોગ્ય એસા કહા ના ઉપર યાને આશ્રય લઈને યોગ્ય उस रूप परिणत होने योग्य ऐसा जो तो आत्मा ने ध्येय तो त्रिकाली द्रव्य छे। नियमसार मा आवे छे के सर्वकर्मना क्षयनो हेतु एवो जे मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग क्या है के मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के बाद क्या होगा तो सर्वकर्म का क्षय होगा। तो सर्वकर्म का क्षय करने का हेतु भूत कौन है तो कहते मोक्ष मार्ग। तो कर्मों का क्षय किए बिना मुक्त तो नहीं होगा और जिसे मुक्तता चाहिए अनंत सुख की प्राप्ति चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा कि मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना पड़ेगा यानी यहाँ अपने स्वभाव का अनुभव करना पड़ेगा। यानी चौथे गुणस्थान से हमने देखा ना मोक्ष मार्ग चालू होता है तो चौथा गुणस्थान कब प्राप्त होगा तो कहते हैं आत्मानुभव होने के बाद चौथा होगा। तो कह रहे हैं નિયમસાર માં આવે છે કે કર્મ સર્વકર્મ ના ક્ષય નો હેતુ એ તો થોડા થોડા નહીં સર્વકર્મ નીકળ જાયંગે એવો જે મોક્ષ માર્ગ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર। મોક્ષ માર્ગ કા અર્થ ઉન્હોને ક્યા કિયા સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર જેને અહીં સ્વસમય પરિણતિ કહી એનો હેતુ ત્રિકાળ પરમાત્મા છે। અને જે જીવ ઉદગલ કર્મ ના પ્રદેશ માં સ્થિત થયેલ છે તેને પરસમય જાણ। જે જીવ રાગમાં સ્થિત છે એ પુદગલ કર્મના પ્રદેશમાં સ્થિત છે। અભી દેખો ક્યાં કહા પુદગલ કર્મ જો કહે ગયા ને પુદગલ કર્મ મેં કહા ને તો પુદગલ કર્મ યાને યહાં ક્યાં કહે રહે જો ભાવ કર્મ હૈ જો જીવ અભી રાગ કર રહા હૈ એસા જીવ પુદગલ કર્મ મેં સ્થિત હૈ। ક્યું કે વો જબ સંયોગો કે તરફ યા પર પદાર્થો કે તરફ જબ જબ દેખેગા तब उसे राग हुए बिना रहेगा नहीं। राग कहो, राग और द्वेष दोनों को एक ही बात है। तो क्या कह रहे, देखो, जे जीव पुद्गल कर्मना प्रदेश में स्थित रहेल छे, थेल छे, तेने पर समय जान। इतले जे जीव राग में स्थित छे, ए पुद्गल कर्मना प्रदेश में स्थित छे, ते भगवान आत्माना श्रद्धा ज्ञान चारित्र में स्थित नथी। राग द्वेष आदि विकारना जेटला अंशो छे, ए बधा पुद्गल कर्मना प्रदेशो छे। क्या कहा, देखो, राग द्वेष आदि विकार जेटला, विकारना जेटला अंशो छे, ते बधा पुद्गल कर्मना प्रदेशो छे, आत्मानो भाव नथी। या आत्मानो हुआ है वो आत्मा कर देना, तेने तेथी तेने एने पर समय, और दूसरा क्या नाम दिया पर समय को, अनात्मा। देखो कितनी बड़ी बात बताए, अनात्मा कह दिया, आत्मा भी नहीं। जो राग द्वेष के परिणामों में ही अटका हुआ है, पर पदार्थों में ही जो लिप्त है, इसको तो अनात्मा ही कह दिया। अभी टीका ऊपर नु प्रवचन, समय शब्द नो अर्थ आ प्रमाणे छे, सम उपसर्ग छे, तेनो अर्थ एक साथे एवो छे। यानी ये उपसर्ग, यानी ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, धातु।
देखो देखो, उसके आगे पहले शब्द लगाते ना, जैसे संयम शब्द है, यम के आगे सम शब्द लगाया तो संयम, तो ये सम उसको उपसर्ग कहते हैं। वो शब्द के पहले वो जल लगाते हैं, उसका विशेषत है। जैसे हम कहते ना आह्लाद हुआ या वो प्रह्लाद हुआ,
मोद, तो प्र लगा,
हाँ, प्रमोद, मोद और प्रमोद, विशेष मोद, तो उसका उस एम्फोसिस हो जाता है उस अर्थ का खास। हाँ, विज्ञान और विज्ञान, तो वी उसके उपसर्ग लगा उसके पहले।
हाँ,
तो यहाँ ये बात सम, ये उपसर्ग है, सम उपसर्ग है।
ये मुनियों को जो उपसर्ग होता है उसकी बात नहीं है,
ये उपसर्ग है ना, वो
व्याकरण का उपसर्ग है,
व्याकरण में जिसको उपसर्ग कहते हैं।
हाँ,
वो इंग्लिश में जो कुछ है वो जान लो,
प्रीफिक्स कहते हैं, ऐसा डॉक्टर का कहना है, आप समझदार हो समझ लो। सम उपसर्ग छे, तेनो अर्थ एक साथे एवो छे, प अने अय, अय एटले गमनार्थक धातु छे, याने क्या, एनो अर्थ गमन, गमन अर्थ छे, अने ज्ञान अर्थ पण छे। याने अय का दो प्रकार से अर्थ होता है, एक तो कहते हैं उसका अर्थ गमन है और दूसरा अर्थ ज्ञान है। तो ये समय का अर्थ बताया, आ जीव नाम नो पद, तेथी थर्ड लाइन, तेथी एक साथे जानवू अने परिणमवू, एवी बे क्रियाओ जेमा होय ते समय कहेवामां आवे छे। आ जीव नाम नो पदार्थ एक ज वक्ते परिणमे पण छे अने जाने पण छे, तेथी ते समय छे। जीव जे सम्यक दर्शन नो विषय त्रिकाळी शुद्ध आत्मा, ते वात आई नथी। ये बात कितनी बार बोलते हैं देखना, अब ये तो दूसरी बार आ गया। आई तो जीवनी सत्ता एटले जीवनु हुआपणु सिद्ध करे छे। आ जीव पदार्थ केवो छे, अभी तो टीका चल रही ना, तो पहले जो आपने 7 पॉइंट देखे थे, उस 7 पॉइंट की फिर दोबारा उसमें हमको विशेष माहिती देंगे। आ जीव पदार्थ केवो छे, के जिसमें इस जीव को एकता करनी है कहो, या उसका आश्रय लेना है कहो, तो जिसका आश्रय लेना है, जिसका अवलंबन लेना है, तो उसके हमें पहचान भी तो होनी चाहिए ना, इसलिए अभी बताना चाहते हैं।
यहाँ ये अभी द्रव्य गुण पर्यायात्मक ऐसा वाला जो जीव द्रव्य जिसको हम कहते हैं ना, उस जीव द्रव्य के पहले पूरी जानकारी देंगे, उसके जो 7 पॉइंट क्रम से आएंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट्स आएंगे वहाँ वहाँ मार्क करना। अब पहला पॉइंट शुरू हो जाता है यहाँ से।
आ जीव पदार्थ केवो छे, तो सदाए परिणमन स्वरूप स्वभाव में रहेलो होवा थी, उत्पाद वे द्रव्यनी एकता रूप अनुभूति जेनु लक्षण छे, एवी सत्ताती सहित छे। अभी क्या समझाना चाहते देखो, पहले तो क्या बताया, सदाय परिणमन स्वरूप स्वभाव छे। आत्मानो स्वभाव केवो छे के सदाय परिणमन स्वरूप एवा स्वभाव में रहेलो होवा थी, अभी उसका स्वभाव ही परिणमन स्वरूप होगा जब ही तो उसमें रहेगा, इसलिए क्या कहा सदाय, सदाय यानी तीनों काल, सदैव जिसको हम कहते हैं, परिणमन स्वरूप स्वभाव में रहेलो होवा थी, तो क्या कहा उत्पाद वे द्रव्यनी एकता रूप अनुभूति जेनु लक्षण छे एवी सत्ता थी सहित छे, यानी आ आत्मा उत्पाद वे ध्रुव सत्ता थी भरेलो छे। हाँ, क्या कहते आए अनुभूति नो अर्थ अनुभव एम नथी, अनुभूति नो अर्थ रहेवू एम छे। अब क्या देखो, अभी अभी समझेंगे के सदाय परिणमन स्वरूप स्वभाव में रहेलो होवा थी उत्पाद वे द्रव्यनी एकता रूप रहेलो छे। अनुभूति नो अर्थ लिया ना, रहेलू रहेवू एवा सत्ता थी सहित छे। अब आगे फोर्थ लाइन,
ये जो लक्षण बताया ना उत्पाद वे द्रव्यनी अनुभूति रूप लक्षण, ये कौन से द्रव्य पर घटित होगा? सभी, हाँ हाँ सभी द्रव्य पर। तो ये द्रव्य का लक्षण हो गया ना उत्पाद वे द्रव्य की अनुभूति, तो पुद्गल को भी अनुभूति होगी कि नहीं? तो ये अनुभव वाली बात नहीं चल रही है बता रहे, ख्याल है ना? हाँ, नहीं तो जीव है तो अनुभव कर रहा है वैसा नहीं लेना, इसमें बताया था अभी। हाँ, रहेल
अनुभूति एटले सम्यक ज्ञान ए वात आई नथी। जड़पन उत्पाद वे ध्रुवपणे रहे छे, रहेवू कीधु ने, तेने जड़नी अनुभूति कहे छे। जड़पन एक समय मा टकीने परिणमे छे तेथी ते सत छे, सत्ता सहित छे, पन एक समय मा परिणमे अने जाने एवी विशेषता जड़मा नथी। आई तो जीवनी सत्ता नु वर्णन चाले छे। उत्पाद वे द्रव्य उक्तम सत सूत्र छे ने, तत्वार सूत्र मा आत्मा पन उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत एवी सत्ताती सहित छे। उत्पाद वे ने ध्रुव ए त्रणेना एक समय मा हुआ पना रूप सत्ता छे। देखो यहाँ एक और एक बात हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन ध्यान देने योग्य ऐसी है कि ये तीन बातें जो है कौन कौन सी, उत्पाद वे और ध्रुवता या द्रव्य कहो, ये तीनों एक समय में ही होता है। यानी जीव का एक समय में नए पर्याय का उत्पाद, उसी समय में पुराने पर्याय का व्यय, और उसी समय में वह टिका हुआ रहना, टिकते हुए रहना, ऐसी उसकी ध्रुवता, ये तीनों बातें एक समय में हो रही है। क्या कहा देखो सेकंड लाइन, उत्पाद वे अने ध्रुव ए त्रणेना एक समय में होवापणा रूप सत्ता छे। सम्यक दर्शन नो विषय शू छे ते वात पची करशे। आई तो जीवनी हयाती केवी रीते छे तेनी सिद्धि करे छे। उत्पाद एटले नवी पर्याय नु थमू, व्यय एटले जूनी पर्याय नु जवू, अने ध्रुवपने कायम रहेवू एवी सत्तानी आई वात छे। जीव जे समय जाने तेज समय परिणमे एवी उत्पाद वे ध्रुव रूप सत्ता ए जीवनु स्वरूप छे। अभी हमें तो अपने स्वभाव का अपने स्वरूप का अनुभव करना है, तो हम कैसा हूँ अपना स्वभाव कैसा है यह तो समझना चाहिए ना। इसलिए क्या समझा रहे हैं कि जीव जे समय जाने तेज समय परिणमे, अभी उसके साथ साथ क्या कहते, एवी उत्पाद वे ध्रुव रूप सत्ता ए जीवनु स्वरूप छे। आ विशेषण थी जीवनी सत्ता नहीं माननार नास्तिकवादियों नो मत खंडित थयो। यानी जो नास्तिकवादी जो है वह जीव के सत्ता को मानते ही नहीं, इसलिए वह सत्ता स्वरूप है, ऐसी बात यहाँ पर बताई। अब कहते हैं तथा पुरुष ने अपरिणामी माननार सांख्यो नो व्यवच्छेद थयो। यानी सांख्य मतवादी जो है वह सांख्य मतवादी क्या कहते हैं, अभी हमने अभी पढ़ा था ना, ब्रह्म सत जगत मिथ्या, यानी क्या कि जो कुछ है वो है, परिणमनशील ऐसा कुछ है नहीं। ये तो ऐसा ही मानते ना कि बस ये अपने जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य कायम टिकता हुआ कायम बदलता है, ऐसा वो नहीं मानते। तो दो जनों ने दो एक एक उसके पार्ट ले लिए, एक कहता है कि नहीं द्रव्य निरंतर कायम ही टिकता है, उसका परिणमनशीलता का जो समय वो उनके ख्याल में ही नहीं है, वो सांख्य मतवादी हो गए। और जो कहते हैं समय समय नया नया द्रव्य होता है, पलटता है, द्रव्य यखा पलटता है, तो वो हो गए क्षणिकवादी बौद्ध मती। तो यहां तो अभी सांख्य मत की बात कर रहे हैं। अविशेषण थी जीवनी सत्ता नहीं माननार, यानी उसकी सत्ता ही नहीं है, ऐसे नास्तिक वाले हैं, उनका भी मत का खंडन हुआ। और पुरुष ने यानी आत्मा ने अपरिणामी माननार, सांख्योनो व्यवच्छे थयो जीव परिणम तो नथी कूटस्थ छे, ए माननार नो परिणमन स्वभाव केवा थी निषेध थयो, यानी वह उत्पाद वे ध्रुवता दो बातें बताई ना, इसलिए उसमें परिणमन स्वभाव भी है और कायम टिकना रूप भी उसका स्वभाव है। इन बातों से एक ही पत्थर में दो पंछियों को ख्याल में आया ना, द्रव्य स्वभाव ध्रुव अपरिणामी जे सम्यक दर्शन नो विषय छे ते वात आई नथी। आई तो परिणाम सहित नु आखु द्रव्य सिद्ध करवू छे, नैयायिको अने वैशेषिको सत्ता ने नित्य ज माने छे, बौद्धो सत्ता ने क्षणिक ज माने छे, ए बधानु अहीं निराकरण थयुं। उत्पाद वे ध्रुव रूप सत्ता केवा थी, उत्पाद वे रूप परिणमन न माने एनो निषेध थयो, अने एकलु क्षणिक ज माने एनो ध्रुव केवा थी निषेध थयो। उत्पाद वे ध्रुव स्वरूप सत्ता नी अहीं सिद्धि करे छे। अभी किसका किस कारण से निषेध किया गया है वो आप ध्यान में रखो तो अच्छी बात है, और ख्याल में नहीं रहा तब भी चिंता मत करना, क्योंकि आपको तो किसी के साथ जाके वाद विवाद तो करने का नहीं ना, अपने को ही स्वयं को समझना है कि मेरा स्वरूप कैसा है। तो कहते उत्पाद वे ध्रुव स्वरूप है, वह उतना ध्यान रखो। उत्पाद फोर्थ लाइन, उत्पाद वे ध्रुव रूप सत्ता ने आई सिद्धि करी छे, कई अपेक्षा थी केवाय छे ते ध्यान में राखे तो आ समझाय एवू छे। उत्पाद वे ध्रुव रूप सत्तानु होवा पणु तेने आई अनुभूति केवामा आवे छे, अनुभूति याने रेवू। अभी दूसरा पॉइंट आएगा, वळी जीव केवो छे। अभी हमने परसों देखा था ना, सात पॉइंट आते हैं इसमें, तो यहां बता रहे दूसरा। अभी तो पहला बताया उत्पाद वे ध्रुव स्वरूप से सत्ता थी रेवो अपणु छे ने, अब चैतन्य स्वरूप पना थी नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप छे। आई पन परिणमन नी वात छे, त्रिकाली ध्रुवनी वात नथी। आई चैतन्य नु परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप छे एम कहूं छे, जड़नु परिणमन जड़पने छे अने चैतन्यनु परिणमन दर्शन ज्ञानपने छे एम सिद्ध कर्युं छे। आ दर्शन एटले सामान्य उपयोग अने ज्ञान एटले विशेष उपयोगनी वात छे। दर्शन एटले सम्यक दर्शन नहीं, दर्शन चैतन्य। अभी यहां तक रुकते हैं। देखो ये आत्मा में एक दर्शन नाम का गुण है, वो दर्शन गुण जो है एक दो अलग अलग गुणों का नाम दर्शन ही है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। अब ये पहचाने कैसे, तो कहते हैं जब जब हम ज्ञाता दृष्टा की बात करते हैं, आत्मा के स्वभाव की बात करते हैं, शास्त्र में ऐसा उसका उल्लेख भी आता है कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा छे जानन देखन स्वभाव वाड़ो छे, तो वहां ऐसा समझना कि वो दर्शन याने ज्ञान के साथ वाला जो दर्शन है, यानी उसका कार्य क्या है, तो ज्ञान का कार्य तो जानना, और यह जो दर्शन गुण है उसका कार्य है देखना। तो अभी देखना यानी आंखों से देखना ऐसा नहीं, तो वह दोनों ही चैतन्य जो गुण है उसके वो दो पार्ट्स है, दो विभाग किए हैं कि क्या है ये चैतन्योपयोग जो है उसके दो भाग हमने कौन से देखे, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। अब ये दर्शन गुण का एक्चुअली कार्य क्या होता है, तो कहते हैं विश्व में मान लीजिए कि 10 पदार्थ है, 10 क्या कहते हैं जाने दो, 6 द्रव्य है, तो ये 6 द्रव्य है, इन 6 द्रव्यों को एक साथ सामान्यपने जानना, ये धर्म द्रव्य है, ये अधर्म द्रव्य है, ये आकाश द्रव्य, ऐसा जुदा जुदा नहीं जानना, सामान्य रूप से जानना। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, हमारी घर की फैमिली फोटो खींची जाती है, आजकल की नहीं हो, पहले की, जब फैमिली में 25-50 लोग रहते थे, आपके घर में भी है ना, मैंने अटेंड किया है वो, तो क्या आपने पुणे में इन्होंने उनके फैमिली का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, उसके लिए फोटो निकालने को मुझको बुलाया, तो मुझको याद है 150 लोग थे, कितने ये इनके भाई के भाई के, ऐसा 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 बहुत बहुत जो कुछ होता हो, तो अभी उनके फोटो खींचे तो तुमको हमको दिखाया था, हाँ फोटो, हाँ ठीक, सामान्य पने देखा, और फिर लक्ष्मी को ही दिखाया, मैं यहां हूं, तो वो पर्टिकुलर किसी को देखा ऐसा, आप अपने अपने फैमिली में देख लेना। तो ये जो सामान्य पने देखना, किसी को विशेष रूप से नहीं देखना, सामान्य अवलोकन, और उसमें विशेष कुछ देखने जाए तो हो गया ज्ञान का कार्य। तो सामान्य अवलोकन करना, या अवलोकन क्यों कहा जाता है, देखना कहो तो लोगों को लगता है कि आंखों से देख रहे, ये अवलोकन करना, ये तो भाई चैतन्य का ही कार्य है, वो सामान्य रूप से जानना कहो तब भी एक जगह से वो गलत नहीं है, एक अपेक्षा से, सामान्य रूप से देखना कहो या अवलोकन करना, अवलोकन का अर्थ भी देखना ही होता है, यानी जिसमें भेद किए बिना जानना, ऐसा ले लो, वो तो दर्शन गुण का कार्य है। और जो एक 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 पर्टिकुलर, अभी यहां क्या बात कर रहे हैं, विश्व में अनंत गुण है, अनंत गुणों के एक एक अनंत द्रव्य है, एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण है, और ये एक एक गुण के तीन काल की अनंती पर्याय है, ऐसे सब द्रव्यों के सब गुणों की सब पर्यायों को एक साथ कोई भी भेद किए बिना सामान्य अवलोकन करना, यह दर्शन का कार्य है। और ये जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य में पर्टिकुलर ये महावीर जी का जीव है, ऐसा इस तरह से उसकी सारी पर्याय अलग अलग, जो कोई एक पर्याय है कोई ऐसा भिन्न भिन्न, और विशेष रूप से जानना, वो काम है ज्ञान गुण का। तो यहां तो एक दर्शन गुण की हमने बात देख ली, अभी दूसरा है कि दर्शन गुण श्रद्धा की अपेक्षा से इस्तेमाल किया जाता है। हम कहते हैं सम्यक दर्शन का विषय क्या है, ये मिथ्या दर्शन है, ये मान्यता मिथ्या दर्शन है, जहां सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन यानी इस जीव के संसार के हेतु या उससे बाहर निकलने का कारण की बात निकलेगी, तब उस दर्शन गुण का अर्थ श्रद्धा गुण का कार्य है, और ज्ञाता दृष्टा वाली बात आएगी, ज्ञान दर्शन उपयोग की बात आएगी, तो वो दर्शन सामान्य अवलोकन वाला दर्शन। इतनी बात बहुत स्थूल मोटे रूप से मैं आपको समझा रहा हूं, अब इसमें और भी आप और भी डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन अभी अपना वो विषय यहां है नहीं। अभी क्या कहते देखो, थर्ड लाइन, आई चैतन्य नु परिडमन दर्शन ज्ञान स्वरूप छे, तो ये दर्शन ज्ञान जोड़ी में लिया ना, तो वो सामान्य अवलोकन वाला लेना दर्शन। जे जड़नु परिणमन जड़पने छे, अने चैतन्य नु परिणमन दर्शन ज्ञान पने छे, एम सिद्ध करू, आ दर्शन एटले सामान्य उपयोग, ये आ गई ना बात, सामान्य उपयोग, अने ज्ञान एटले विशेष उपयोग नी वात छे, दर्शन एटले सम्यक दर्शन नहीं, चैतन्य स्वरूप पनाथी पोते चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा छे, यानी ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप पोते आत्मा छे, ते नित्य उद्योत रूप, उद्योत यानी प्रकाश रूप, नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति में परिणमन स्वरूप छे, यानी ये जो ज्योत होती है, लाइट क्या बोलते हैं आप लोग, ज्योत यानी मशाल जो हो या कोई भी ज्योत होवे, तो वो फ्लेम वो कैसी है, नित्य उद्योत रूप है, वहां प्रकाशमान हो रही है। वैसा ये ज्ञान दर्शन स्वभाव कैसा है, नित्य उद्योत रूप है, प्रकाशमान है। और वो कैसा है, स्पष्ट है, निर्मल है। ऐसा दर्शन ज्ञान ज्योतिमय परिणमन स्वरूप छे। चैतन्य नु परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप छे। आ विशेषण थी चैतन्य ने ज्ञानाकार ज्ञान स्वरूप नहीं माननार सांख्य मत नु निराकरण थयु। ये आखिरी लाइन भूल जाना। यानी कई लोग ऐसे भी है कि वो ज्ञान को चैतन्य स्वरूप, अपने आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानते ही नहीं है, और चैतन्य है तो उसको ज्ञानाकार या ज्ञान स्वरूप मानते ही नहीं है, तो उनका यह ये सांख्य मतियों का निराकरण कर दिया। दूसरे ये जो बताए ना, चैतन्य स्वरूप पना थी नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट ज्ञान दर्शन ज्योति स्वरूप छे, ऐसा बताकर उन्होंने उसको भी रूल आउट किया, उनके खोटी मान्यताओं। ये उनकी मान्यता का निराकरण करने के लिए ये नहीं बता रहे हो, यहां तो हमें अपने स्वभाव को पहचानना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, और उस अपेक्षा से ये बात कर रहे। अभी बाय द बाय अन्य बातें हो रही है तो वो क्या करें, ये तो उनके बुद्धि की कमाल है कि जो सीधी बात बताने से खोटी बात भी वहां रूल आउट हो जाती है। अभी वळीते केवो छे, अनंत धर्मों मा रहेलू जे, ये थर्ड पॉइंट आ गया हो, अनंत धर्मों मा रहेलू जे एक धर्मी पणु तेने लीधे जेने द्रव्यपणु प्रकट छे। क्या कहते हैं, ये अनंत धर्म है, इसमें धर्म कहो गुण कहो शक्ति कहो सब इसमें ले लेना। तो क्या कहते हैं, अनंत धर्मों मा रहेलू जे एक धर्मी पणु, यानी अनंत गुणों का कहो धर्मों का ऐसा एक स्वरूप है, एक पिंड है, एक धर्मीपन है उसमें, तेने लीधे जेने द्रव्य बनु प्रकट छे। अब क्या कहते हैं, हमने देखा था कि अनंत गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। धर्म ये है, वह धर्मी है, तो वो द्रव्यपना उसका प्रकट हो गया है, इसलिए कहते हैं देखो अनंत धर्मों में रहेलू जे एक धर्मीपनु, वो एक धर्मीपना है इसके कारण से जेने द्रव्यपनु प्रकट छे। अनंत धर्मोनी एकता ते द्रव्यपणु छे। आई तो बधा धर्मोनी वात छे, एकलो ध्रुव एम नहीं, पन उत्पाद व्यय ध्रुव आदि अनंत धर्मो थी तेने एक धर्मीपणु प्रकट छे। सम्यक दर्शन नो विषय जे ध्रुव द्रव्य तेनी आई वात नथी। गिना कितना हो गया, अभी गिन लो इसके आगे। आ तो द्रव्य ना ना
तीसरा पॉइंट चालू है ना,
पॉइंट तीसरा है, मैंने ये बताया यहाँ बार बार स्वामी। हाँ, जो सम्यक दर्शन का विषय है उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बात यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ तो जो द्रव्य या जो पर्याय अपने स्वभाव रूप परिणत हो रही है ऐसे पर्याय सहित जीव द्रव्य की बात कर रहे। हाँ, यानी यहाँ तो आत्मा जो सम्यक रूप से परिणत हो रहा है उसकी बात है, गुण की भी बात नहीं, आत्मा। देखो आ तो अनंत, क्या गया, आ तो द्रव्यना अनंत धर्मों में रहेलू जे एकपणु तेने लीधे द्रव्यपणु जेने प्रकट छे। तो ये प्रकटता कहाँ होगी पर्याय में, नहीं हा? ते वात, ते द्रव्यनी वात छे। आ विशेषण थी वस्तु ने धर्मो थी रहित माननार बौद्ध मतनो निषेध थयो। यानी वो तो पूरे द्रव्य का एक क्षण भर ऐसा मानते, यहाँ तो ये धर्म के कारण वह टिका हुआ है और पर्याय पलटती है, ये बात को वो मानते नहीं है। आ उत्पाद वे ध्रुव अपने आखो समय छे ते प्रमाण ज्ञान नो विषय छे। सम्यक दर्शन नो विषय जे द्रव्य ते जुदी वस्तु छे। अहीं तो हजीव आखी वस्तु सिद्ध करे छे। वळीती केवो छे, क्रमरूप अने अक्रमरूप प्रवर्तता अनेक भावो जेनो स्वभाव हुआ थी जेने गुण पर्यायो अंगीकार करिया छे क्रमे प्रवर्ते ते पर्याय अने अक्रमे प्रवर्ते ते गुण छे। अब ये बात भी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की थी, आपको याद होगा तो, गुणों में कोई क्रम नहीं होता है, सारे गुण अनादि से है उसमें। हाँ, सहवर्ती कहो या अक्रमवर्ती कहो, यहाँ अक्रम इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, नाम भी सहवर्ती है। तो अक्रम यानी क्या कि पहले ज्ञान गुण आया, फिर बाद में ज्ञान का श्रद्धा हो गई तो श्रद्धा गुण हो गया, फिर ये दोनों मिलके अपने स्वरूप में लीन हो गए तो अभी चारित्रता, ऐसा एक के बाद कहने में भले क्रम आवे लेकिन यह तो अनादि से ही अस्तित्व में है, क्योंकि द्रव्य अनादि है तो द्रव्य तो गुणों से ही भरा हुआ है तो गुण भी अनादि से होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ काल जाने के बाद और एक नया गुण आया वो उसमें इंक्लूड हो गया, फिर और कुछ काल के बाद और नया गुण आया फिर उसमें इंक्लूड हो गया, ऐसे करते करते अनंत हो गए। ऐसा अगर मानेंगे हम तो हमारी क्या गलती होगी, रानू बता पाएगी? हेतल तू नहीं? अच्छा, कौन हाथ हाथ कौन ऊपर उठा रहा है? डॉक्टर साहब, हाँ, अनवस्था दोष किस अपेक्षा से आएगा? नहीं नहीं, मुझको तो नहीं समझ में आया। अरे भाई, हाँ अच्छा, उसको भी हम समझा सकेंगे। सुनो, गुण की परिभाषा कोई हमें समझाए। हाँ, यानी अभी जब समझो कि एक 10 साल के बाद एक गुण आया, 10 साल अपन समझने के लिए लेते, तो पहले 10 साल की जो कुछ अवस्था थी उसमें गुण कहाँ था? नहीं था, तो वो गुण नहीं गिना जाएगा। गुण तो हम उसी को, वो पूरे पूरे अवस्था में है और पूरे भाग में है, तो भाग में कहीं बाहर से आके अंदर आ गया तब भी वो पूरे भाग में पहले नहीं था, अभी कहाँ से आया? अभी आपने जो बताया अगुरु लघुत्व गुण, वो भी सही बात है। हाँ, क्योंकि हमने पहले देखा था, अभी वो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, तो इसमें हमको ऐसा लेना पड़ेगा कि अलग अलग नहीं हुए तो कोई उसमें आके ऐड भी नहीं हो सकता है, उस अपेक्षा से हम उसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हम गुण की परिभाषा अगर ध्यान में रखते हैं तो गुण की परिभाषा के हम बिल्कुल पकड़ सकते हैं कि भाई पूर्ण अवस्थाओं में चाहिए ना हमको, तो अवस्था तो काल बताता है ना, अवस्था काल बताता है, तो पहले नहीं था बाद में आया फिर उसके बाद में कोई और आया, तो तीनों काल की अवस्था में वो नहीं है तो वह गुण नहीं हो सकता, इस तरह से हम उसको ये कह सकते हैं। अभी यहां क्या बता रहे, देखो, क्रम रूप अने अक्रम रूप प्रवर्तता अनेक भावो। अभी यहां अपनी तो बात चल रही थी कि क्रम रूप से कौन प्रवर्तन करता है, तो कहते पर्याय एक के बाद एक आती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि थोड़े टाइम विश्रांति लेवे और 10 पर्याय एक साथ उदय में आ जावे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, आप बोलेंगे बहन, आपका विषय ये, मेरा नहीं। तेजू तू बोल, नहीं प्रतिभा बताइए आप। हाँ, द्रव्य तो गुण क्या बताता है, प्रत्येक पर्याय निरंतर, मतलब गुण की पर्याय निरंतर चलती रहे। हाँ, तो ये क्या बताता है, पर्याय का स्वभाव कैसा है, एक टाइम भी नहीं रुके। हमने क्या बोला कि थोड़ा टाइम आराम करे और 10 पर्याय एक साथ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो 2-3 गड़बड़ी होगी कि प्रत्येक समय में परिणमन होना यह द्रव्य का स्वभाव है, वह भी उड़ जाएगा और 10 एक साथ आ जाएगी, तो एक समय में पर्याय खत्म होती है वो तो 10 समय तक कहाँ गई, एक समय में एक आएगी ना। तो अभी यहां क्या कहते हैं, एक ही द्रव्य गुण की जो 3 काल की पर्याय है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह क्रम से ही आएगी। यह भी क्रम से आने का, जो आपने मोती की बात कही वो भी बराबर है, लेकिन हमें तो अभी क्या कहता हूं मूल बात ख्याल में आवे तो आगे की बात वो आएगी। वो आपने तो प्रवचन सार का उदाहरण दिया मोती की माला का, लेकिन वहां तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले ये तो हम समझें कि ये मोती की माला के माध्यम से भी यह क्रमवर्ती पर्याय की बात बताई जा रही है। ख्याल में आया? अब क्या कहते हैं पर्याय कैसी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा होते 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 वो आएंगे, यानी वो कभी सहवर्ती जो आप कह रहे वैसे नहीं होगी। और दूसरी मैं बात बताता हूं, अक्रम भी नहीं होगी। अक्रम यानी क्या, जो एक के बाद दूसरे नंबर की पर्याय, दूसरे के बाद तीसरे नंबर की पर्याय, अभी पहले पर्याय की बात दसवें नंबर की पर्याय पहले आ जाए या हजारवें नंबर की पर्याय पहले आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो क्रम से जो आनी है वही आएगी। अभी अपने को तो यहां क्या बताना है कि जो कर्म है पर्याय जो है वो क्रम से आएगी एक के बाद एक, और जो गुण है वह अक्रम रूप से, यानी उनमें कोई क्रम नहीं है, सारे के सारे एक साथ ही हैं। कब से है तो कहते हैं अनादि से।
यहाँ पर्याय और गुण के लिए एक ही शब्द आया है, कौन सा आया है? हाँ बोलो, प्रवर्तेचे शब्द
यहाँ पर इसमें
आया, एक ही शब्द से दोनों को बताया डॉक्टर ने, बराबर बताया। आगे कोई और बताए, पढ़ना पुस्तक में पढ़ना। हाँ मिलित भाई, भाव अनेक भाव, भाव कहने से पर्याय भी आए और गुण भी आए, तो उसमें डिफरेंस कैसे किया? तो क्रम से होने वाले भाव और अक्रमवर्ती ऐसे भाव, ख्याल है ना? नहीं ख्याल है? देखो यहाँ क्या कहा,
क्रम रूप अनेक क्रम रूप,
क्रम रूप क्रम रूप प्रवर्तता अनेक भावो, इससे क्या बताया पर्याय, और अक्रम रूप प्रवर्तता अनेक भावो, ये गुण है ना। भाव शब्द से दोनों को उन्होंने गर्भित कर दिया, और बाद में स्पेशल लिख भी दिया गुण पर्यायो, यानी दोनों के लिए भाव शब्द आ गया। यहाँ
आगे बताया ना, भावो जेनो स्वभाव हुआ थी, जेने गुण पर्याय अंगीकार करिया छे, क्रमे प्रवर्तते पर्याय ने अक्रमे प्रवर्तते गुण छे। आई तो वस्तु ने सिद्ध करवी छे, आखी चीज, चीज एटले द्रव्य, गुणो अने पर्यायो सहित छे। गुणो ते अक्रमवर्ती छे एटले सहवर्ती छे, पर्यायो उत्पाद व्यय रूप क्रमवर्ती छे, आवो ज स्वभाव छे। सम्यक दर्शन नो विषय जे द्रव्य एनी आ वात नथी, आ तो जीव द्रव्य आखी चीज छे, ते गुण पर्याय सही छे, एम नक्की करे छे। यहां तीनों की बात ली है विनोद भाई, तेमाथी सम्यक दर्शन नो विषय जे ध्रुव सामान्य ते पछी सिद्ध करशे। आ विशेषण थी पुरुष ने निर्गुण माननार सांख्य मत नो निराश थयो, क्योंकि आनंद गुणों का पिंड ऐसा कह रहे ना। अब अगला पॉइंट, वड़ी ते केवो छे, पोताना अने परद्रव्योना आकारों ने प्रकाशवानु सामर्थ्य हुआ थी, जेने समस्त रूप ने जड़कावनारु एक रूपपनु प्राप्त करियूं छे। अब क्या कहते हैं, ये पोताना अने परना द्रव्योना आकारों ने, यानी वो जो कुछ है उनके प्रकाशवानी यानी जानवानु सामर्थ्य हुआ थी, जेने समस्त रूप ने यानी सबको प्रकाश झड़कावनारू एक रूप प्राप्त छे, यानी वो सबको जाने ऐसी उनमें लायकात है, ताकत है। पोतानु ज्ञान करे अने परद्रव्यना आकारनु एटले परना स्वरूपनु ज्ञान करे एवं स्वपरने प्रकाशवानु एनु सामर्थ्य छे। एनु एटले कोनु तेजुबेन? હા આત્માનું અત્યારે કોની અહીંયા વખાણ ચાલે છે? મારી હા. અરે ભાઈ હરેક કે આત્મા કી યહાં વાત ચલ રહી હૈ ક્યા? દેખો ઇસમે કિતની અચ્છી તરહ સે બતાયા હૈ, સ્વ પરને પ્રકાશવાનું એનું સામર્થ્ય છે. એ સામર્થ્ય કોને કહેવાય કે આજના દિવસે છે ને પછી નીકળી જાય, એ સામર્થ્ય નથી. આ તો ત્રિકાળી રહે એવો એનો સ્વભાવ છે. હા, અને પાછા ઝઘડા થાય કે સ્વપ્રકાશક છે કે પરપ્રકાશક છે, ને એમ માને તો મિથ્યાત્વી ને તેમ માને તો. અરે પ્રભુ શું કહે છે જુઓ. હા, ત્રણ કાળ, ફોર્થ લાઈન, ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણવાનું સામર્થ્ય એક સમયની પર્યાયનું છે, છતાં એક રૂપને રહે છે, ખંડ ખંડ નથી થતું એમ કહે છે. યાને વો જાને અનેકોં કો, લેકિન વહ જ્ઞાન અનેક રૂપ નહીં હોતા હૈ, હમેશા એક રૂપ હી રહેતા હૈ. આહા, આચાર્યએ કેટલી કરુણા કરીને સ્પષ્ટ કર્યું છે, સાધારણ જીવોને ખ્યાલમાં આવે એવી શૈલીથી સ્પષ્ટ કર્યું છે. ઉત્પાદ વે રૂપ બધી પર્યાયો ક્રમસર થાય છે, અહીં તો વસ્તુને સિદ્ધ કરે છે એટલે બધી પર્યાયોની વાત છે. સમ્યક દર્શન કઈ રીતે થાય એ વાત અત્યારે નથી, અહીં તો વસ્તુની સિદ્ધિ કરે છે કે સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જોયેલું તત્વ યાને આત્મા આવું છે. આત્મા એસા હૈ. એ સિવાય અન્ય મતીઓ ગમે તે પ્રકારે કહે તેનો અહીં નિષેધ કરે છે. અન્ય મતવાળા કહે એવું વસ્તુ સ્વરૂપ છે જ નહીં. પોતાના અને પરદ્રવ્યોના આકાર સ્વરૂપને, આકાર એટલે સ્વરૂપને, એટલે પોતાના સ્વરૂપને અને પરદ્રવ્યોના સ્વરૂપને પ્રકાશવાનું સામર્થ્ય હોવાથી સમસ્ત રૂપને પ્રકાશનારું, યાને સમસ્ત જીવો સમસ્ત પદાર્થો કે સ્વરૂપ કો રૂપને અને પ્રકાશનારું એક પણ જેને પ્રાપ્ત કર્યું છે એવો જીવ પદાર્થ તે સમય છે. ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જ્ઞાનની પર્યાય જાણે, છતાં જ્ઞાન એક આકાર રૂપ છે એમ કહે છે. ક્યા કહા? ઇતની બાતો કો જાનતે હુએ ભી ઉસ જ્ઞાન મે અનેકપના નહીં આયા, વહ તો એક રૂપ હી રહા હૈ. આ વિશેષણથી જ્ઞાન પોતાને જ જાણે છે અને પરને જાણતું નથી એમ એકાકાર જ માનનારનો, તથા પોતાને નથી જાણતું પણ પરને જાણે છે એમ અનેકાકાર જ માનનારનો વ્યવચ્છેદ થયો. વળી તે કેવો છે? અભી એ છઠ્ઠા પોઈન્ટ આ ગયા ને. અન્ય દ્રવ્યોના જે વિશેષ ગુણો એટલે ખાસ ગુણો, જેમ કે આકાશનો અવગાહન હેતુત્વ, ધર્માસ્તિકાયનો ગતિ હેતુત્વ, અધર્માસ્તિકાય બરાબર લીખ લેના, સ્થિતિ હેતુત્વ, કાળનો વર્તના હેતુત્વ અને પુદ્ગલનો રૂપીપણું, તેમના અભાવને લીધે, એ અન્ય કે જો વિશેષ ગુણે એમના અભાવને લીધે અને અસાધારણ ચૈતન્ય રૂપતા એટલે સ્વભાવના સદભાવને લીધે આકાશ ધર્મ અધર્મ કાળ અને પુદ્ગલ એ પાંચ દ્રવ્યોથી જે ભિન્ન છે, અન્ય દ્રવ્યના જે ખાસ ગુણો એનો આત્મામાં અભાવ હોવાને લીધે અને અસાધારણ ચૈતન્ય સ્વભાવના સદભાવને લીધે આકાશ આદિ પાંચ દ્રવ્યોથી જીવ ભિન્ન છે. યે તો બાત સમજ મે આવે એસી હૈ? હા, આગે બઢે હમ. આ વિશેષણથી એક બ્રહ્મ વસ્તુને જ માનનારનો વ્યવચ્છેદ થયો, યાને મેં હી હું અન્ય કુછ નહીં હૈ એસે માનને વાલી, હા ભાઈ ઇનસે મેં ભિન્ન હું. જબી હમકો ભિન્નત્વ કરના હૈ તબ કમ સે કમ દો વસ્તુ હોગી ના, તો ભિન્નત્વ કિસમે કરેંગે? દો ચીજ હોગી તો ઇસમે તો કહેતે યે અનંત જો અન્ય દ્રવ્ય હૈ ઇનસે યહ આત્મ સ્વભાવ ભિન્ન હૈ, તો ઇસલે કહે રે એક બ્રહ્મ વસ્તુને જ માનનારનો વિવચ્છેદ થયો. વળી તે કેવો છે? અનંત અન્ય દ્રવ્યોના ક્ષેત્રથી ભિન્ન છે, અનંત અન્ન દ્રવ્યો સાથે અત્યંત એક ક્ષેત્રાવકારરૂપ હોવા છતાં પણ પોતાના સ્વરૂપથી નહીં છૂટવાથી જે ટંકોત્કીર્ણ ચૈતન્ય સ્વભાવરૂપ છે, યાને જો અનેક અનંત દ્રવ્ય હૈ વે ઇનકે સાથ એક ક્ષેત્રાવગાહ રૂપ સે રહેતે હુએ ભી યહ અપને સ્વભાવ કો કભી છોડતા નહીં હૈ, ઔર વો કૈસા હૈ ટંકોત્કીર્ણ ચૈતન્ય સ્વભાવ રૂપ હૈ। ટંકોત્કીર્ણ યાને સમજ લો ના કે એવરલાસ્ટિંગ, ઇસકા અર્થ એસા લેના, યે ટાંકી સે ઉત્કીર્ણિત જૈસે હોતી હૈ કોઈ ચીજ તો જલ્દી ખતમ નહીં હોતી હૈ, વૈસા યે કાયમ ધ્રુવ ટિકને વાલા એસા યહ ચૈતન્ય સ્વભાવ હૈ। જ્યાં આત્મા છે ત્યાં અનંત પરમાણુ, આકાશ કાળ ધર્મ અધર્મ બધું છે, એ વાત તો હમને આપણે પહેલે સિદ્ધ કરી હોઈ હૈ। આવો અત્યંત એક ક્ષેત્રાવગાહ હોવા છતાં જીવ પોતાના સ્વરૂપથી છૂટતો નથી, ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ પોતે રહે છે। ગુણ અને પર્યાયપણે ટંકોત્કીર્ણ ચૈતન્ય સ્વભાવ જ રહે છે। આ વિશેષણથી વસ્તુ સ્વભાવનો નિયમ બતાવ્યો, જીવ અન્ય દ્રવ્યો સાથે એક જ ક્ષેત્રમાં મળીને રહેવા છતાં પોતાના ક્ષેત્રથી ભિન્નપણે રહી પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ રહે છે, સ્વરૂપથી કદી છૂટતો નથી। આવો જ વસ્તુ સ્વભાવ છે। આમ બોલથી સાત બોલથી જે કહેવામાં આવ્યો એવો જીવ નામનો પદાર્થ તે સમય છે। સાત બોલથી સમય સિદ્ધ કર્યો છે। ઉત્પાદ વે ધ્રુવયુક્ત સત્તાથી સહિત છે। દર્શન ધ્યાન સ્વરૂપ પરિણમન સહિત છે। અનંત ધર્મોમાં રહેલા એક ધર્મીપનાને લીધે તેને દ્રવ્યપણું પ્રકટ છે। અક્રમવર્તી અને ક્રમવર્તી એવા ગુણપર્યાયો સહિત છે। સ્વપર સ્વરૂપને પ્રકાશવાનું સામર્થ્ય હોવાથી તેને સમસ્ત રૂપને પ્રકાશનારું એક રૂપપણું છે। છઠ્ઠા પોઈન્ટ, અસાધારણ ચૈતન્ય ગુણના સદભાવને લીધે તથા પરદ્રવ્યોના વિશેષ ગુણોના અભાવને લીધે પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન છે। ઓર સાત પોઈન્ટ કહે રહે, અન્ય દ્રવ્યોથી અત્યંત એક ક્ષેત્રાવગાહ હોવા છતાં પોતાના ભિન્ન ક્ષેત્રપણે રહેતો એક ટંકોત્કીર્ણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ રહેવાનો સ્વભાવ છે। યાને ઇતને અનંત દ્રવ્ય ઇસ વિશ્વમાં રહેતે હુએ એક ક્ષેત્રમાં રહેતે હુએ ભી યહ જીવ આજ તક કભી પરરૂપ યા પર ક્ષેત્ર સે યા પર સ્વભાવ સે મિલિત નહીં હુઆ હૈ, વહ બિલકુલ તદ્દન ચૈતન્ય સ્વરૂપ એસા અપના સ્વયં કી ઉસને એન્ટિટી અલગ રખી હૈ। અભી દેખો કૈસી મજા હૈ, યે જો આત્મા હૈ, યે શરીર જો હૈ, વહીં શરીર હૈ ઓર વહીં આત્મા હૈ, ઓર ઇસ શરીર મેં ભી ઇતને કીડે હૈ, કુછ કુછ યે વર્મ્સ હોતે ના, જો ભી આપ સમજ લો, તો વો ભી તો જીવ હૈ, વો ભી યહી ક્ષેત્ર મેં રહેતે, તો વો ભી એક દૂસરે સે મિલાન નહીં કરતે। અરે ઉસકી તો જાત છોડો, એક નિગોજ શરીર મેં અનંત જીવ હોતે હૈ, તો વો ભી અલગ અલગ હૈ, ભલે ઉનકા સબકા શરીર એક હૈ, ક્યોંકિ સબકે સબ તો બહાર નહીં નિકલતે। યે તો નિયમ હમને જાણા હૈ કે અનંત શરીર, મતલબ જો શરીર મેં અનંત જીવ હૈ, એસે અનેક શરીર હૈ ખ્યાલ મેં, લેકિન ઇનમે સે છ મહિને ઓર આઠ સમય મેં 608 હી જીવ બહાર નિકલતે, બાકી વહીં કે વહીં રહેતે। તો યાને યે બાત યહી સિદ્ધ કરતે કે એક ક્ષેત્ર મેં રહેતે હુએ ભી વહ જીવને અપના સ્વરૂપ કો છોડા નહીં હૈ। આહા હા, જ્ઞાન એને કહીએ જે પૂર્વા પર વિરોધ રહિત વસ્તુને સિદ્ધ કરે છે। યાને યે તો સમજમાં આવે એસી બાત હૈ, યાને કહી કોન્ટ્રાડિક્શન નહીં હૈ, એસી જો વસ્તુ હૈ ઉસકો સિદ્ધ કરને વાલા હી જ્ઞાન સચ્ચા જ્ઞાન હૈ। આગળ પાછળ વિરોધ આવે તેને જ્ઞાન ન કહેવાય, पूर्व और अपर, पूर्व यानी पहले और अपर यानी बाद में, ऐसा कोई दोष रहित जो कोई वस्तु है उसको सिद्ध करे वही सच्चा ज्ञान है, ऐसा कहते हैं। हवे आई स्व समय पर समय कई रीते छे ते समझावे छे। जारे आ जीव सर्व पदार्थों ना स्वभाव ने प्रकाशवामा समर्थ एवा केवल ज्ञान ने उत्पन्न करनारी भेद ज्ञान ज्योति नो उदय थवाथी सर्व परद्रव्यो थी छुटी ज्ञान दर्शन स्वभाव में निश्चित प्रवृत्ति रूप आत्मतत्व साथे एकत्व रूप ने एकत्व रूपे लीन थई प्रवृत्ति करे छे त्यारे दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित थवाथी पोताना स्वरूप ने एकता रूपे एकज वक्ते जाणतो तथा परिणमतो एवो ते स्वसमय एम प्रतीत रूप करवामां आवे छे। अभी देखो थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ देखो क्या समझा रहे हैं। यहां तो पहले उन्होंने सात पॉइंट तो हमारे बिल्कुल सामने रख दिए, अब यहां क्या कह रहे हैं कि यहां जीव एक एक पॉइंट के ऊपर हम बोलते हैं। देखो यहां कह रहे कि उत्पाद वे ध्रुव युक्त सत्ता थी सही छे, यानी इसकी सत्ता तो है, तो वो सत्ता कैसी है तो उत्पाद वे ध्रुव स्वरूप है, यानी यहां इसका स्वयं का परिणमन करने के लिए इसको परद्रव्य की कोई गरज ही नहीं है कहो, या किसी की हेल्प की उसको कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि स्वयं ही परिणमनशील है, उत्पाद वे ध्रुवता सत स्वरूप है। अब कहते वो और कैसा है कि ज्ञान दर्शन स्वरूप परिणमन सही छे, यानी उसका ज्ञान जानना जानना और देखना देखना यह उसका स्वभाव है। ये सारे सात पॉइंट बता के इस पर से वे अन्य द्रव्यों से इस जीव द्रव्य की भिन्नता साबित करते हैं, और ऐसा जो भिन्न द्रव्य होते हुए भी अपना स्वभाव ऐसा है उसका कि वह पर के किसी हेल्प की कहो या किसी मदद की अपेक्षा ही नहीं है, फिर भी परिणमन करेगा। पहले बताया था कि जो जाने और परिणमन करे उसको समय का ख्याल में, तो ऐसा तेरा जो स्वभाव है उसमें लीन होने के लिए उसका कैसा स्वभाव है ये सात पॉइंट के माध्यम से हमारे सामने रखा है। हाँ, और ये सात पॉइंट हम ख्याल में रखकर ये अगला पैराग्राफ जो पढ़े यहां लिखा ना, हवे आई स्व समय पर समय कई रीते छे ते समझावे छे, ये पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। हाँ, चाहे तो ये सात पॉइंट को भी दोबारा हम देख लेंगे, तो उसके माध्यम से हमको ये आगे का जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहना चाहते हैं, अल्टीमेटली यही बात बताना चाहते हैं कि यहां पर इस जीव द्रव्य की अन्य द्रव्यों से बिल्कुल अलग बात है, और ऐसा अलग स्वभाव वाला कि अपना जो चैतन्य स्वरूप को कभी छोड़ना नहीं चाहता, चाहता क्या छूटता ही नहीं है उससे, ऐसा उसका स्वभाव है चैतन्य स्वभाव, और उस चैतन्य स्वभाव को जानकर हम उसी का आश्रय लेवे तो आगे की बात चालू होने जैसी है, फिर हम विशेष रूप से कल देखेंगे।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक।